दादी, सभी तो नए कपड़े पहन के जाएंगे ईदगाह में, और मैं वही पुराना फटा पजामा।
चिमटा वाला,
ये कितने का है?
ये टोपी
नहीं नहीं, ये चिमटा।
ये छोटे मियाँ, निकालो एक आना, ये लो चिमटा।
ईदगाह, एक ऐसी कहानी जिसे शायद सभी ने पढ़ा होगा। इस कहानी का पात्र है एक छोटा बच्चा हामिद, जो अपने हम उम्र साथियों की तरह खेल खिलौने गुड्डे गुड़ियों के प्रलोभन में नहीं फंसता और अपनी दादी के लिए मेले से एक चिमटा खरीद कर लाता है। मगर चिमटा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। इस छोटी सी कहानी में लेखक प्रेमचंद ने हामिद से बड़ी बड़ी बातें कहलवा दी, वो बातें जो न सिर्फ पाठक के दिल को छू जाती हैं, बल्कि पाठक उन्हें आत्मसात भी कर लेता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है प्रेमचंद के इंसान के मनोविज्ञान को समझने वाले रचनाकार के रूप में। आजादी से पहले भारत के यथार्थ का जैसा चित्रण प्रेमचंद ने किया, वैसा किसी अन्य लेखक के साहित्य में नहीं मिलता। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय, पिता डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। धनपत राय जब सिर्फ 15 साल के थे तो उनके पिता ने उनका विवाह करवा दिया। विवाह के साल भर बाद ही पिता का देहांत हो गया और अचानक पूरे घर का बोझ उन पर पड़ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्चा। बचपन से ही प्रेमचंद को उर्दू आती थी। 13 साल की उम्र से प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ नाटक लिखे और फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखने शुरू किए। इस तरह से प्रेमचंद का साहित्यिक सफर शुरू हुआ। प्रेमचंद जिस तरह का साहित्य लिख रहे थे, उसके पीछे की वजह उनकी पृष्ठभूमि और देश का औपनिवेशिक शासन था, जिसे वो खुद जी रहे थे। उनके दिन पैसों की तंगी में बीत रहे थे। प्रेमचंद के पौत्र आलोक राय बताते हैं,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि किल्लत थी, मतलब कि खाने के लाले पड़े थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पैसे की कमी थी। और मेरे पिता बताया करते थे कि वो और उनके बड़े भाई दोनों को डाल दिया गया था। मेरे पिता तो रहे होंगे 13-14 साल के रहे होंगे जब प्रेमचंद गए हैं बम्बई। इन दोनों को यहाँ डाल दिया गया था इलाहाबाद में हॉस्टल में। बम्बई गए थे जैसे कि पूरब के मर्द अक्सर जाया करते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो वो भी वहां गए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए। वो एक अलग प्रसंग है। तो यहाँ पे मेरे पिता और मेरे ताऊ दोनों, ये दोनों इलाहाबाद में हॉस्टल में डाल दिए गए थे। और ये हिदायत अपने बच्चों को भी दी थी कि आप बहुत अमीर बाप के बेटे नहीं हैं, ये खुशफहमी नहीं पालिएगा। तो बेहद शॉर्टेज का जमाना था, वो तो हमको याद है। और तो और जब मेरे पिता और मेरे ताऊ का एक इनफॉर्मल सा पार्टीशन हुआ था कि कुछ टाइटल्स तुम छापो, कुछ टाइटल्स हम छापेंगे वगैरह वगैरह, उस वक्त यानी शॉर्टेजेस थी।
हालांकि दूसरी शादी के बाद प्रेमचंद के जीवन की परिस्थितियां कुछ बदली। वो स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए और इसी जमाने में 5 कहानियों का संग्रह छपा, नाम था सूज़े वतन। इसमें रचनाकार ने देश प्रेम और देश की जनता के दर्द को लिखा। अंग्रेज शासकों को इसमें बगावत की बू आने लगी। इस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, लिहाजा नवाब राय की खोज शुरू हुई। नवाब राय पकड़ लिए गए, उनके ही सामने इस कृति को अंग्रेजों ने जला दिया। बिना आज्ञा न लिखने का बंधन लगा दिया गया। इसके बाद धनपत राय नवाब राय नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रेमचंद बन गए और ये नाम सुझाया उनके नजदीकी मुंशी दया नारायण निगम ने। कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। उन्होंने ही प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रकाशित की थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, ये था मंगलसूत्र, पर ये कभी पूरा नहीं हो पाया। धन और परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रेमचंद अपनी किस्मत आजमाने 1934 में माया नगरी मुंबई जा पहुंचे। अजंता कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी की, लेकिन साल भर का अनुबंध पूरा करने से पहले ही वो वापस लौट आए। हालांकि प्रेमचंद की कहानियों, उनके उपन्यासों पर कई फिल्में बनी, लेकिन जनता ने उनके साथ कभी भी न्याय नहीं किया। प्रेमचंद के उपन्यास या कहानी पर बनी अगर किसी फिल्म ने सफलता का मुंह देखा तो वो थी 1977 में बनी शतरंज के खिलाड़ी। इसके निर्देशक थे सत्यजीत रे।
इन बहादुर सिपह सालारों के हाथ तो देखिए, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं। वो असली नहीं अक्ल के घोड़े दौड़ाना पसंद करते हैं। तभी शतरंज जैसे पुराने और अजीम खेल को अपना मैदान बना रखा है।
तो सवाल यह है कि जो प्रेमचंद हिंदी साहित्य की दुनिया में कहानी और कथाकार के रूप में बड़ा नाम बन चुके थे, उनकी लिखी कहानियों और उपन्यासों पर बनी फिल्मों को जनता ने नकार क्यों दिया? मैंने भारतीय फिल्मों पर लिखने वाले साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र से पूछा कि प्रेमचंद की कथा कहानियों पर कौन कौन सी फिल्में बनी।
तीन तो कहानियों पर फिल्में बनी हैं, जिनमें सदगति शतरंज के खिलाड़ी हिंदी में बनी, दोनों सत्यजीत रे ने बनाई, और कफन पे मृणाल सेन ने ओका ओरी कथा बनाई। तीन ये फिल्में हैं, और तीन उनके नॉवल पे बनी फिल्में हैं, जिनमें हम गोदान, गबन और हीरा मोती को याद कर सकते हैं। तो छह फिल्में बनी हैं, जिसमें एक बंगाली में है और पांच हिंदी में है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने जिस समय सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ रुख किया था, उस समय तमाम और सारे बड़े लोग फिल्मों के लिए लिख रहे थे, और ये शायद एक वजह रही हो जिसने उनको इस बात के लिए, मतलब उनमें जोश दबारा हो कि ये एक बड़ा माध्यम है। क्योंकि ये पीरियड 1931 से 35 के बीच का है, जब साधन हसन मंटो, आगा हश्र कश्मीरी, मोहनलाल दवे, नारायण प्रसाद बेताब, जिया सरहदी जैसे लोग, वजाहत मिर्जा जैसे लोग फिल्मों के लिए लिख रहे थे। और उस जमाने में यहूदी की बेटी, देवी देवयानी, अछूत कन्या, किसान कन्या जैसी फिल्में बनी। तो अपने प्रेमचंद को भी फिल्म लिखने का मन हुआ, और उन्होंने मजदूर लिखी 34 में, लेकिन बहुत सफल नहीं हुए और सिनेमा का माध्यम रास नहीं आया। ये देखने वाली बात है कि प्रेमचंद जो साहित्य में बहुत लोकप्रिय रहे और जिनके साहित्य पर फिल्में बनी, उसको सिनेमा मीडियम ने अपने तरह अंगीकार नहीं किया, बल्कि उनके साहित्य को अपनी तरह अंगीकार किया।
प्रेमचंद की रचनाओं में दलित हैं, किसान है, गरीबी और शोषण की दास्तां है, इसलिए लोगों ने प्रेमचंद की रचनाओं में वामपंथ से झुकाव को खोज लिया। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखने वाले उनके पुत्र अमृत राय से 1981 में बात की थी बीबीसी हिंदी सेवा के ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने, और उनसे पूछा कि तमाम लोग उन्हें वामपंथी लेखक कहते हैं, तो इसका जवाब अमृत राय ने ये दिया था।
मैंने अपनी किताब कलम का सिपाही में ये बात लिखी है, जब उन्होंने 1919 में दयानारायण निगम को लिखा कि मैं तो बोल्शेविक उसूलों को मानने लगा हूँ, तो वहाँ पर मैंने लिखा है कि बातों के धांधे में मत आइए, वो बोल्शेविक वगैरह कुछ नहीं हो गए हैं, वो अपने ढंग से अपने मुहावरे में सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो एक इनकलाब इसी धरती पर कहीं हुआ है, जिसमें कि हल इतने गहरे चला कि नीचे की ज़मीन ऊपर आ गई, और जिन लोगों से कोई तवक्को नहीं की जाती थी कि वो सिवाय बोझा ढोने के और कुएं से पानी निकालने के, जैसा अंग्रेजी वाला मुहावरा है, कभी राज भी कर सकते हैं, तो वो राज करने की स्थिति में आए हैं, इसका वो अभिनंदन कर रहे हैं ये कहकर कि मैं बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, वो ज़माना था जबकि उस इनकलाब की सही बात विश्व की जनता के पास तक पहुँचने भी नहीं पाती थी, लेकिन उस सबको चीरते हुए इस आदमी ने एक बुनियादी बात को पकड़ लिया। ये कहना तो गलत है कि प्रेमचंद वामपंथी लेखक है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके लेखन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके भीतर से वही गूंजें निकलती हैं अन्याय, अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ लोगों को सचेत करने की, जगाने की, जनता के भीतर जागृति लाने के लिए और उनको संघर्ष के लिए सन्नद्ध करने की।
भारत के ग्रामीण जीवन को प्रेमचंद ने आम लोगों की भाषा में बयां किया, और गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा जैसे उपन्यासों और कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, घास वाली जैसी कई कहानियों में लिख डाला। लेकिन उस समय की जो समस्याएं थी वैसी तो आज भी है, तो फिर प्रेमचंद के बाद उस तरह के सामाजिक सरोकारों वाला लेखक क्यों नहीं मिलता? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं,
प्रेमचंद के उपन्यासों को घर की औरतें पढ़ती थी, दुकानदार पढ़ते थे, शहर के पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, हिंदू पढ़ते थे, मुसलमान पढ़ते थे, ईसाई पढ़ते थे, सिख भी पढ़ते थे। अब ऐसा कोई लेखक नहीं दिखाई देता जिसको इतने लोग पढ़ें। आज का हिंदी साहित्य शहरी मध्य वर्ग का साहित्य है, शहरी जीवन की आपाधापी और जो समस्याएं हैं उस पर लिखने वाले लोग ज़्यादा हैं। हाल के वर्षों में यह भी हुआ है हिंदी साहित्य में कि जो किसान जीवन पर लिखे उसको लोग पिछड़ा हुआ लेखक मानने लगे हैं। ऐसा प्रेमचंद के ज़माने में तो और भी नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद के ज़माने में एक वैचारिक वातावरण भी था गांधीवाद का, जो गांव से बहुत जुड़ा हुआ था। आज के ज़माने में गांव की बात करने वाले न तो वैसा कोई विचारक है और न वैसा कोई लेखक है।
पर सवाल यह है कि एक ऐसे परिवार के लिए जिसे विरासत में प्रेमचंद जैसी शख्सियत मिली हो, उसके लिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना कितना कठिन काम है। प्रेमचंद के पौत्र आलोक राय,
प्रेमचंद का फिगर जैसे एक तरह से हावी भी रहता है, उपलब्ध भी रहता है हमेशा हर चीज में, और मेरे पिता का जो संबंध था प्रेमचंद की स्मृति से, छवि से, वो एक अजीब सा, एक तरफ तो जाहिर स्नेह था लेकिन बार बार, और ये स्वर अक्सर सुनने में आता है उनकी बातचीत में कि यार ये आदमी हमें छोड़ता नहीं, इतनी बड़ी छाप थी। मेरे पिता जो के साथ तो जो बात थी कि यार ये मतलब हमारा अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है वो कभी पहचाना नहीं जाता है, जा नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी छाया इस आदमी की है, इसी में जिएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इस पीढ़ी तक आते आते तो हमको ये एहसास जरूर था कि यार कुछ कोई था जरूर हमारा पूर्वज।